मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।
ओम शांति। एक तालाब में एक मछली ने एक बार कुछ मछुआरों की बातचीत सुन ली। एक मछुआ कह रहा था कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं, और जैसे ही यह बात उस मछली ने सुनी उसने सोचा कि जल ही जीवन है और मुझे जीवन का कोई बोध नहीं, जल क्या है मुझे पता नहीं, यदि जल नहीं तो जीवन संभव नहीं, फिर मैं क्या कर रही हूं, अब तक मुझे जल क्या है वही पता नहीं। तो उसने पूछताछ चालू की। पहले वो छोटी मछलियों के पास गई, उसने पूछा ये जल क्या है। उन छोटी मछलियों ने कहा हम अभी अभी आई है, हमने कभी ऐसा शब्द आज तक नहीं सुना, तुम बड़ों के पास जाओ सीनियर मछलियां, शायद उन्हें कोई खबर हो। तो वो मछली बड़ी मछलियों के पास गई, बड़ी मछलियों ने कहा जल, हमने सारे शास्त्र पढ़े पर यह शब्द आज तक कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा तुम कुछ दूसरी ज्ञानी मछलियां हैं, विद्वान, उनके पास जाओ। वो उन विद्वान मछलियों के पास जाती है तो वो भी कहती है कि हमें भी नहीं पता, तुम ऐसा करो हेडक्वार्टर्स जाओ, ये जो नदी बह रही है इससे बहते हुए समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, दीदी दादे दादिया, वो मछलियां शायद तुम्हें बता सके कि जल क्या है, क्योंकि ऐसा शब्द हमने आज तक कभी सुना नहीं, हमारे शब्दकोश में यह शब्द ही नहीं। तो वो मछली सरिता की धारा में बहते हुए समुद्र में पहुंचती है, वहां पर बड़ी बड़ी मछलियों से उसकी मुलाकात होती है और वो पूछती है जल क्या है। तो उसमें एक समझदार बड़ी मछली होती है, वो कहती है मैं जब जवान थी मुझे भी ऐसी ही धुन सवार हो गई थी ये जल क्या है, और मुझे पता तब चला जब एक दिन एक मछुआरा आया और उसने मुझे पकड़ लिया अपने जाल में, और उस जाल में मैं तड़पने लगी और तब मुझे पता चला जल क्या है। यही जो आगे है पीछे है ऊपर है और नीचे है। और यदि तुम्हें यह जानना है जल क्या है तो एक पल भर के लिए छलांग मार कर देखो किनारे पर, जो तड़प होगी वो तुम्हें बताएगी कि जल तो वही है जिसमें हम रहते हैं, जल तो वही है जिसमें हम जीते हैं, जहां हमारा जन्म हुआ, ऊपर नीचे आगे पीछे। यदि कोई विद्वान मछलियों से पूछे कि जल क्या है तो जो जान चुकी है कहेगी यही जो सर्वत्र है, यही जो संसार है, यही तो श्वास है। और यदि जल नहीं तो श्वास नहीं, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? मुरली। यदि इस जीवन का ये श्वास नहीं तो जीवन घुटने लगेगा। और जो मस्ताने हैं और जो दीवाने हैं मुरली के, यदि वो ये जानना चाहे तो प्रयोग करके देख सकते हैं किनारे पर छलांग मारकर क्या होता है। तो आज की मुरली मुरली पर है, जो कि ब्राह्मण जीवन का क्या है? श्वास, जो कि जादू की छड़ी है, जो कि इस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, जो कि गीता का अध्याय है, जो कि महाभारत की नांदी है, जो कि परमात्म वेद है, परमात्म मौज है, ब्रह्मा के अनुभव की खान है, जो कि आईना है, सत्यनारायण की कथा है, तिजरी की कथा है, अमर कथा है, और क्या है? ज्ञान घास है, संजीवनी बूटी है, और क्या है? अमृत है, अंधों के लिए लाठी है, और क्या है? आईना है, और क्या है? शुभ रस है, सोम रस है, और क्या है? 1000 पॉइंट्स बताओ। श्वास है, जीवन जीना सिखाने की संहिता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ब्राह्मण जीवन का संस्कार है, परमात्म वरदान है, परमात्म देन है, परमात्म विशेषता है, परमात्म संगीत है, आत्मा का भोजन है, टॉनिक है, सीरप है, इंजेक्शन है, दवाई है, चौप चीनी है, च्यवनप्राश है, और क्या है? ज्ञान की बरसात है, और क्या है? रोशनी है, आकाश गंगा है, और क्या है? सारे वेदों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है, सारे ज्ञान का सार है, और क्या है? श्रेष्ठ पद पाने का आधार है, और क्या है? परमात्म वाणी है, देव वाणी है, दिव्य वाणी है, प्रभु की वाणी है, परमात्मा का लिखा हुआ प्रभु पाती है, लव लेटर है, सोर्स ऑफ इनकम है, और क्या है? परमात्म शास्त्र है, और क्या है? सच्ची सच्ची गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान, साहिब और क्या है, बोलते जाओ। गोपिकाओं की दीवानगी की हद है। इक्कीस जन्म की कमाई और क्या है, जीवदान है, जीवन का आधार है, जीवन रस है, प्रेम रस है और क्या है, हृदय की झनकार है, दिल की धड़कन है और क्या है, चित्त चोर है, चित्त को चुराने वाली है, मन चोर है, हृदय को भाव विभोर करने वाली है, परमात्मा सरगम है, सुरों का क्या, नींद की गोली नींद की गोली है या जगाने की गोली है हीरे तुल्य बनाने वाली है और क्या है, जीते जी मारने वाली और क्या है, दिल को राहत देने वाली, दिल को सुकून देने वाली, मन का गीत प्रीत मीत से मिलाने वाली, विजयी बनाने वाली और क्या है, जख्म पर बाम है, मलहम है और क्या है, मूर्छित को सुरजीत बनाने वाली, नारायणी नशा चढ़ाने वाली, रूहानी खुमारी चढ़ाने वाली, परिपक्व बनाने वाली, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लाने वाली और तंदुरुस्त बनाने वाली, लास्ट सो फास्ट ले जाने वाली और मार्ग बताने वाली, परमात्मा राह है, परमात्मा मार्ग है, परमात्मा संदेश है, परमात्मा आदेश है, परमात्मा समझानी है, परमात्मा याद प्यार है, याद प्यार नहीं मुरली मिस तो याद प्यार मिस, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 2011। आत्मा का श्रृंगार है, आत्मा का मेकअप बॉक्स है, आत्मा को सुख से भरपूर करने वाली है, आत्मा का वो हो गया, जान डालने वाली हो गया, अलादीन का चिराग है, ढाल है, 84 जन्मों की कहानी है, मुरली खुली किताब है, मुरली हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का हल है, हर समस्या का समाधान है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रश्न का उत्तर है और मुक्ति जीवन मुक्ति की चाबी है और हो गया। जो रिपीट कर रहे इसका मतलब नहीं सुन रहे, सुनने की कला मुरली पूरी सुनने पर है और क्या है, माया के लिए मृत्यु दंड और आंसर बुक है, हुज हु है, वर्ल्ड टाइम्स है, न्यूज़पेपर है और विकारो जीत बनाने वाली है और हो गया श्रेष्ठ स्थिति और दुखियों को सुखी बनाने वाली और सिद्धि स्वरूप बनाने वाली और रिफाइंड रास्ता दिखाने वाली आज की मुरली से और ऑक्सीजन और खजाना ईश्वरीय पूंजी और उड़ने के पंख और मुरली परमात्मा स्पेस रॉकेट है, परमात्मा स्पेस रॉकेट स्पेस शटल ठिकाने लगाने वाली है, राहत देने वाली है, सुकून देने वाली है, आराम देने वाली है, विश्रांति देने वाली है, पावा परम विश्रामा यह अनुभूति कराने वाली है, दिशा देने वाली है, दिशा भ्रांत जो हुए है, दिग्भ्रमित जो हुए है उनको फिर से नई दिशा दिखाने वाली, राह दिखाने वाली, दशा और दिशा ठीक करने वाली, उमंग उत्साह लाने वाली, जीवन जीने की कला सिखाने वाली मरने की कला सिखाने वाली। मरे कैसे, मरो है जो कि मरो, ये मरण है मीठा। परमात्मा वार्निंग है, परमात्मा ऑर्डिनेंस है, परमात्मा फरमान है, परमात्मा आदेश श्रीमत है और मैनर्स सिखलाने वाली है, इटिकेट्स है, डिवाइन इटिकेट्स, डिवाइन मैनर्स, बुद्धि का बुद्धि को पारस मणि है। और वह कौन सा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, चिंता मणि है, सभी चिंताओं से मुक्त करने वाली है और पारसनाथ बनाने वाली है। अमृत की खान है मुरली, तव कथा अमृतम तत् जीवनम कवि विरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया गोपिका गीतम श्लोक नंबर 9 में गा रही है, हे गोविंद हे गोपाल, हे मुरलीधर हे मुरली मनोहर, हे बंसीधर तव कथा अमृतम, तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है, तेरी जो मुरली है अमृत है। तप्त जीवनम, संसार की आत्माएं तप रही है विकारों में, पाप में, ऐसी तपती हुई आत्माओं की तपिश मिटाने वाली। तप्त जीवनम कवि विरडितम, कवियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, सन्यासियों ने, भक्तों ने जिसका गायन किया है। कवि विरडितम कल्मशापहम, कलमश कलंक धोने वाली है, ऐसी उसकी वाणी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि बोल अनंता, अनंत उसकी वाणी है। और क्या है मुरली, क्या करने वाली, ग्रहचारी से मुक्त करने वाली। मंत्र है मुरली, महामंत्र है मुरली। और किसका खान, खजाना हो गया, गॉडली गिफ्ट है, उपहार है, सौगात है, प्रेजेंट है। कमाई को खाजन दो बार हो गया, संविधान है। कितना अच्छा पॉइंट है, परमात्मा संविधान है, ब्राह्मण जीवन का संविधान है, आचार संहिता है, विधि का विधान। और ज्ञान दान से, और निडर बनाने वाली है, और परमात्मा गीत हो गया, और लॉ मेकर बनाने वाली है, मुरलीधर बनाने वाली है, मुरली मास्टर मुरलीधर बनाने वाली है। आज के याद प्यार में बाबा ने कहा है, मुरली और मुरलीधर स्वरूप बच्चों को मास्टर भगवान बनाने वाली है। यहाँ सभी स्पीकर्स है, एकमात्र संस्था है संसार की जहां पे ऐसे नहीं कहा, यहाँ लीडर बनने की फैक्ट्री है, स्पीकर्स ही निकलते हैं एडमिशन होने के बाद। एक बार भर्ती हो गए तो सीधा स्पीकर्स ही निकलते, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो स्पीकर नहीं है। हर एक वक्ता है, परमात्मा वक्ता, दिव्य वक्ता, हर एक की वाणी में तेज है पवित्रता का। हजार अभी बहुत दूर है, बोलते जाओ। अतीन्द्रिय सुख को क्या, अर्श, अर्श से फर्श की, फर्श से अर्श, फर्श से अर्श में ले जाने वाली है। रावण के राज्य को खत्म करने वाली क्या, मुरली है। दिल को हो गया, डिप्रेशन को खत्म करने वाली, और स्वर्ग से सुंदर बनाने वाली। बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को, एक कवि ने लिखा है, बांध रहा हूं शब्दों को अनुभूति में, जो निर्बंधन रही है अब तक, जो स्वच्छंद बही है अब तक, बांध रहा हूं शब्दों से उस स्त्रोत स्वनि अर्थात नदी पुनीत को, बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को। चक्षु श्रवा बन सुना, श्रवण दृष्टा बन कर देखा है जिसको, चक्षु श्रवा सांप को कहा जाता है। ऐसी अंधश्रद्धा है कि सांप आंखों से सुनता है, उसके कान नहीं होते। कवि लिख रहा है चक्षु श्रवा बन सुना, आंखों से मैंने तुमको सुना, कानों से देखा, श्रवण दृष्टा बनकर देखा है जिसको, शब्द दे रहा हूं मैं उसकी तर्कातीत प्रतीति को। वह अनुभव तर्कातीत है, तर्क से परे है, बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को। जिसको मन ही मन में गाया, जिसको मन ही मन में गाया, दीर्घकाल तक जिसे संजोया, व्यक्त कर रहा हूं अब उस ही मन की विमल विभूति को। बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को, परमात्मा प्रेम की अनुभूति, परमात्मा मिलन की अनुभूति, परमात्मा मुरली की अनुभूति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। शब्दातीत है, वाक्यातीत है, भावातीत है। तो आप सबको काम दे रहे हैं, मुरली क्या है मेरे लिए, वो हरेक को लिखना है, अभी नहीं बाद में। कितनी पॉइंट्स होनी चाहिए? 1001। वखर, वखर है वो, वखर परमात्मा माल है। तो आज बाबा ने लास्ट सो फास्ट जाने की विधि बताई, गैलप करने की विधि बताई, आगे बढ़ने की विधि बताई और रिफाइंड रास्ता बताया। आगे बढ़ने की विधि, गैलप करने की विधि, रिफाइंड रास्ता और लास्ट सो फास्ट जाने की विधि। कौन किससे मिलने आया है? मुरलीधर किससे मिलने आया है? स्नेही बच्चों से मिलने आया है। किसके स्नेही? मुरली के स्नेही बच्चों से मिलने आया है। और क्या देख रहा है? बाप से कितना प्यार है और मुरली से कितना प्यार है, उस मुरली मनोहर से कितना प्यार है और उसकी सुनाई हुई मुरली से कितना प्यार है। 10 बातें हैं मुरली में। मुरली आत्मा को क्या क्या करती है इस विषय में, मुरली सुनते ही आत्मा को क्या हो जाता है, आत्मा में क्या क्या अनुभूतियां होती है, आत्मा को कौन से गहरे अनुभव होते हैं, किस आकाश में उड़ने लगती है आत्मा, किस अनंत के जगत में प्रवेश करती है आत्मा, कौन से तर्कातीत अनुभव उसको होते हैं, तर्कातीत प्रतीति होती है आत्मा को। बांध रहा हूं शब्दों में, उसको आज भगवान ने खुद ही बता दिया कि वो क्या क्या होता है आत्मा को। तो एक एक पॉइंट के साथ, एक एक अभ्यास, सबसे पहली बात मुरली आत्मा को मस्त कर देती है। क्या कर देती है? मस्त, मस्त अर्थात, मस्त अर्थात, मस्त अर्थात मस्त कलंदर, मस्त अर्थात मस्त लोग कौन होते हैं? सूफियों में मस्त शब्दों का प्रयोग आया है। ये वो भगवान के प्यार में मस्तानी आत्माएं जो संसार से बेखबर, संसार के नियमों को जो नहीं मानती, उन्हें मस्त कहा गया है। मेहर बाबा ने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था और ऐसे पांच मस्त का वर्णन किया था. एंड हु आर दोज मस्त एंड व्हाट आर दोज मस्त एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मस्त, उसके विषय में विस्तार से कहा था. तो बाबा कह रहे हैं मुरली सुनते ही मुरली के पीछे क्या हो जाते हैं, मस्त और फिर शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं और शुद्ध बुद्ध खोकर तीन बातें होती है. कौन सी वो बहुत आगे है. देही अभिमानी बन जाते हो, विदेही को याद करने लगते हो और देहधारी स्मृति की शुद्ध बुद्ध खो जाती है. आत्मा देही अभिमानी बन जाती, विदेही को याद करने लगती और देह की स्मृति और देह की सुद्बुद्ध और देहधारी सुद्बुद्ध खो जाती. सुद्बुद्ध अर्थात कॉन्शियसनेस, सुद्बुद्ध अर्थात चेतना, खुद सुद्बुद्ध अर्थात होश. होश ही नहीं रहता इस संसार का होश. इतनी मगन हो जाती है, इतनी लवलीन हो जाती है, इतनी समा जाती है, ऐसी मस्त हो जाती है, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते चिंतन करते करते सुद बुद्ध सब बिसरी. 1910 भारत में बनारस में काशी नरेश हुए थे, प्रभु नारायण सिंह. गीता पाठी थे. एक बार अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिसाइटिस. यूरोप से पांच डॉक्टर आए, सर्जन, ऑपरेशन करने के लिए. काशी नरेश ने कहा मैं किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करता, न सिगरेट पीता हूं, न बीड़ी पीता हूं, न चाय, न कॉफी. आप मेरी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया करना. डॉक्टरों ने समझाया ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, पेट को काटा जाएगा, चिल्लाओगे, रोओगे, ऐसा दर्द होगा, ऐसी पीड़ा होगी. उसने कहा नहीं, मैं कोई एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, मैं अपनी गीता का पाठ पढ़ते रहूंगा, आप अपना ऑपरेशन चालू रखना. उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, भूल देनी ही पड़ेगी, एनेस्थीसिया देना ही पड़ेगा, कुछ द्रव्य देने ही पड़ेंगे, कुछ ड्रग्स का प्रयोग करना ही पड़ेगा. उसने कहा नहीं, नहीं माना, मर जाऊंगा पर नहीं लूंगा. तो डॉक्टरों ने कहा पहले हम थोड़ा प्रयोग तो करके देख ले, सुई चुबाई कुछ कुछ इधर उधर चीड़ फाड़ की, उनको कोई खबर नहीं. सोचा चलो देखते हैं, और ऑपरेशन चालू हुआ. वो अपनी गीता पढ़ते रहे, इधर गीता पढ़ रहे हैं, इधर अपेंडिक्स का ऑपरेशन चालू है. ऑपरेशन पूरा हुआ, उन्हें कोई खबर नहीं. आश्चर्य हुआ डॉक्टरों को, ये क्या. उन्होंने कहा जब मैं गीता पढ़ता हूं तो मैं भूल जाता हूं बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया से जैसे बेहोश हो जाता हूं, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, इतना मगन हो जाता हूं. और मेरे इतने लंबे समय का यह अभ्यास है, ऐसा भाव विभोर होकर पढ़ता हूं कि आपका ऑपरेशन कब हुआ मुझे पता ही नहीं. एक संसार का गीता पाठी वो गीता पढ़ रहा है, और भगवान अब आए है और सच्ची गीता सुना रहा है, और गीता का भगवान गीता सुना रहा है, और हम किसी का मोबाइल बजा तो कौन है, कोई दरवाजे से आया तो कौन है, कहीं दर्द है तो आज दर्द है, कैसा कॉन्सेंट्रेशन और कैसा प्यार होगा उसका गीता के प्रति. तो सबसे पहली बात मुरली से क्या होता है, क्या होता है, मस्त हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध खो जाती है। कितनी एकाग्रता उसमें चाहिए और कितना इंटरेस्ट उसमें चाहिए और कितना प्यार उसमें चाहिए और कितना प्यार और लगन उससे चाहिए। जैसे मछली उसके बिना नहीं रह सकती, क्या हमने उसकी इतनी गहराइयों को छुआ है या केवल ऊपर ऊपर तैर रहे हैं? सोचना अर्थात तैरना, विचार सागर मंथन करना अर्थात गहराई में जाना। हम कहां हैं, हम कौन है? नियम पूर्वक मुरली सुनने वाले हो या विधि पूर्वक सुनने वाले हो, निमिनाथ हो, तत्ते तवे हो, भुट्टू। कुछ दिन पहले मुरली में शब्द आया था, कुछ बच्चे बैठते हैं और निश्चय नहीं है मुरली सुनते समय, उन्हें बाबा ने कहा भुट्टू, तत्ते तवे, ऐसे ऐसे नाम दिए हैं। इंटरेस्ट डेवलप करना है। और जो बहनें यहां बैठी है उनके लिए एक स्पार्क विंग ने टेक्निक बताई है मुरली सुनाने की, जिसको नाम दिया है एस्ट्रल ब्रॉडकास्ट मोड, एस्ट्रल ब्रॉडकास्ट टेक्निक। दादी जानकी पुणे में थी, मेरा सोसाइटी, कितने कम लोग थे मुरली सुनते समय उस जमाने में, पर ऐसे सुनाती थी जैसे हजारों के सामने सुना रही है, और वो लाखों अब डायमंड हॉल में दादी मुरली सुना रही है और इतने हजारों सुन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा हिस्ट्री हॉल, शिव बाबा उस तन में प्रवेश करके ऐसे मुरली सुना रहे जैसे हजारों है। तो मुरली सुनाते समय, अपने अपने सेंटरों पर भाषण देते समय ये समझना, ये सोचना कि मैं केवल इनको नहीं सुना रही हूं, परंतु सारा विश्व मेरे सामने, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, होल वर्ल्ड एस्ट्रल ब्रॉडकास्ट, पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रही हूं, केवल इतने चार लोगों को नहीं सुना रही हूं। कोई गीता पाठशाला है, कोई छोटी जगह है, किसी माता का घर है, वहां बहन जा रही है या माता सुना रही है या कोई भाई सुना रहा है, ये समझना कि सकल ब्रह्म विश्व मेरे सामने है, उसको मैं सुना रही हूं, सुना रहा हूं। सुनाने वाला भी उसमें उतना मगन हो जाए, तभी सुनने वाले भी मगन होंगे। पहली पॉइंट क्या, मस्त। दूसरी पॉइंट, मुरली सुनते सुनते मस्त होकर नाचने लगते हो। तो मुरली का क्या प्रभाव है? नाचना, डांस। कौन सी डांस? ज्ञान की डांस और मन की डांस और स्थूल डांस, बहुत छोटी है, परंतु जिसका मन डांस करे तो मुरली से क्या होता है? मन डांसने लगता है, मन मयूर नाचने लगे, अर्थात खुशी भर जाए। क्या ऐसा होता है या केवल थियरी? होगा तब जब वाक्य वाक्य का हमने चिंतन किया होगा, बोल बोल का हम पर हमको रिगार्ड होगा, शब्द शब्द की गहराई में हम गए होंगे, तब होगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो आए और मुरली सुनाने वाले ने सुना दी, सुनने वालों ने सुन ली और गए घर, कारोबार पूरा हुआ, सुनाने वालों का और सुनने वालों का। मुरली परमात्म कारोबार है, सांसारिक कारोबार नहीं। तो मुरली क्या करती है? मस्त कर देती है, सुपुत बुला देती है, पहली बात। दूसरी बात, नाचना चालू करती है आत्मा। जैसे गोपियों की अवस्था खो जाती थी, उधर जैसे ही मुरली सुनती थी, कोई काजल लगा रही है, काजल इधर जा रहा है, कोई पानी भर रही है, दूध किसी को दे रही है, वो सब बहा जा रहा है, काम कर रही है, वो काम, ऐसी सुदबुद्ध खो जाती थी। कृष्ण गाति गीते, कृष्ण ध्याति चित्ते, ऐसी उनकी अवस्था। कृष्ण 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 उनके मन में समाया था, और ये उसकी मुरली है, परमात्मवाणी है। 5000 साल के बाद वह अव्यक्त अनहद नाद सृष्टि में गूंज रहा है। कितना चातक चात्रक होकर मैं सुन रहा हूं, कितना मन रिसेप्टाकल बना है, कितना मन रिसेप्टिव बना है, सेंसिटिव बना है। तीसरा, रूहानी नशा। क्या करती है मुरली? रूहानी नशा चढ़ा देती है, रूहानी खुमारी। प्रभु कुमारी नानका चढ़ी दिन रात, नानक को ऐसी खुमारी चढ़ी है कि दिन रात बस वही आवाज मन में गूंज रहा है। तो ऐसी खुमारी, ऐसा नशा, ऐसा इंटॉक्सिकेशन, और इंटॉक्सिकेशन के लिए इसके पहले भी कभी सुनाया था, 5 बातें चाहिए। कोई अगर मैखाने में जाए, मधुशाला में जाए और थोड़ी सी पी ले तो शराब का नशा चढ़ेगा क्या? नशा चढ़ना अर्थात व्यक्ति डोलना चाहिए चलते चलते और गिर जाना चाहिए कहीं। एक तो डोज को बढ़ाओ, थोड़ा सा पीने से नहीं होगा, ज्यादा पीना पड़ेगा। दूसरा, बार बार पीना पड़ेगा। सुबह एक बार पी लिया और सोचे कोई कि नशा चढ़ गया, ऐसे नहीं होता है। बार बार पीते रहो तब कहीं जाके नशा चढ़ता है, तब कहीं पियक्कड़ नाम उसको दिया जाएगा। तो हम रूहानी पियक्कड़ है, ईश्वरीय पियक्कड़, डिवाइन ड्रंकर्ड्स, सेलेस्टियल ड्रंकर्ड्स। तीसरा, नीड सॉल्यूशन, एकदम उसमें पानी भी नहीं मिक्स नहीं करना, वो ही पीना पूरा। चौथा, उसके साथ और कुछ दूसरा पीना, लिमका भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, तो कहां से नशा चढ़ेगा? खाली प्योर वही पीना, उसके साथ कुछ मिक्स नहीं करना। और पांचवा, दोस्तों की महफिल में जब पिया जाता है तब ज्यादा नशा चढ़ता है। तो संगठन में पिया जाए, नीट सॉल्यूशन हो, कुछ मिक्स ना हो, मात्रा ज्यादा हो, और दिन भर पीते रहना। और दूसरों को भी पिलाते रहना, खुद भी शराबी और दूसरों को भी शराबी बनाते रहना। ऐसी ये प्रभु प्रेम की शराब है, द डिवाइन वाइन। मस्ताने हो जाना, दीवाने हो जाना, नशे में चूर, ऐसी खुमारी, ऐसा खुमार, ऐसी इलाही मस्ती, स्पिरिचुअल इनिब्रिएशन, इंटॉक्सिकेशन। तो तीसरा है, क्या करती है मुरली? नशा चढ़ा देती है। नशे चलने के बाद कैसे चलना चाहिए? झूमते झूमते, डोलते डोलते। अरे तुम्हें भगवान मिला है, तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए। कितनी? ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए। कहां है दीवार? इतनी खुशी तुमको होनी, तुम्हारी नींद फिर जानी चाहिए। चौथा, उड़ान। मुरली का तान, मुरली की साज, राज, उड़ा देती है। कहां से उड़ाती है? धरती से और देह से। ये देह फिर व्यर्थ हो जाता है। जब वासना मन से मिट गई तब देह की तरफ ध्यान जाना बंद हो जाता है। जिसके मन में वासना समाई है वो देह देखता है। दो दिन पहले मुरली थी, हमें पैसों से क्या लेना देना, हमें तो सुंदर चाहिए। देह से नफरत आनी चाहिए। पुराना पति देह, क्या प्यार करे इससे। झूठन का झूठन का झूठन का झूठन, झूठा हुआ है हमने और कईयों ने इसको भोगा है जन्म जन्म। नफरत आ जानी चाहिए देह से, देह के भोग से, देह की इच्छाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, प्राप्तियों से, आकर्षण से, देह के भान से, अभिमान से, अहंकार से। क्या है इस देह में, क्यों खींच के रखा है इसने, क्यों सारा संसार पागल है इस देह के पीछे, शायद वास्तविकता को नहीं देख पा रहा। कौन गोरा कौन काला, कौन सुंदर कौन असुंदर, आत्मा ही काली है तो देह सुंदर कहां से होगा। जहां ठंडी है वहां चमड़ा थोड़ा सा सफेद रहेगा। परसों की मुरली में था तो चौथा मुरली क्या करती है, उड़ान, परवाज, फ्लाइट उड़ाती है देह से और धरनी से। नीचे नहीं आना है, शरीर को देखना, देह में सुख लेना, देह के भोग विलास में डूब जाना। महात्मा गांधी गुजरात में कहीं पर थे और वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे, एक ही जेल में। वो 5 बादाम खाते थे महात्मा गांधी, यही उनका नाश्ता था। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये भी कोई नाश्ता है, कम से कम 5 नहीं 10 खाते थे। उन्होंने कहा कम से कम 15 तो खाओ, इससे पेट भरता है क्या, 10 बादाम खाने से खाली बस यही नाश्ता। तो महात्मा गांधी ने कहा कितनी अच्छी आप बात आपने बता दी, 5 ज्यादा खा लो। उन्होंने कहा इससे अच्छा है मैं 5 कम खाऊं, 5 से क्या फर्क पड़ता है, 5 ज्यादा खा लो तो 5 से क्या कम पड़ता है, कल से मैं 5 कम खाऊंगा, 5 ही खाऊंगा बस। संयम, जिह्वा रस को जिसने जीता सारी इंद्रिय शिथिल हो जाएगी। ओवर ईटिंग को जिसने जीता संयम की धारा बहने लगेगी। पांचवा सैर, पांचवा मुरली क्या कराती है, सैर कराती है। किसके साथ, बाप के साथ। कहां सैर कराती है, तीनों लोक की सैर, चारों युगों की सैर, पांचों युगों की सैर, और कहां की सैर, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर दुखी अशांत आत्माएं, संसार में दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, तड़प रही आत्माएं, शब्द उन्हें राहत नहीं दे पा रहे, संकल्प राहत देंगे, वाइब्रेशंस राहत देंगे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ब्राह्मणों पर अपने संकल्पों द्वारा आत्माओं की सेवा करने की। तो पांचवा सैर, मुरली सैर कराती है राज्य की। अपने राज्य में कभी जाना, कभी इस लोक कभी उस लोक कभी इस लोक, घूमते रहना। उड़न तश्करी, तश्करी बनकर उड़ना, अंतवाहक शरीर द्वारा उड़ना, अशरीरी होकर उड़ना। वरदान में है मौन, साइलेंस, छठवा झूला। छठवा क्या करती है? मूला मुरली झूले में झुलाती है। कौन सा झूला? अति इंद्रिय सुख का झूला। पॉइंट टू बी नोटेड, अति इंद्रिय, इंद्रिय नहीं, देह के सुख नहीं, देह के परे, इंद्रियों के परे, पंच इंद्रियों से परे, अशरीरी अवस्था में, बीज रूप स्थिति में, कंबाइंड स्थिति में, ज्वालामुखी स्वरूप में जो अनुभव होते हैं, वह सुख उस झूले में झुलाती है मुरली। सातवा दवा, कौन सी दवा? दुआ की दवा। मुरली वह अनुभव कराती है जिसमें दुआ की दवा मिलती है और जिससे आत्मा क्या होती है? तंदुरुस्त और मन दुरुस्त। आत्मा में बल आता है, योग बल से, स्पिरिचुअल पावर से आत्मा भरती है। संसार को तुम्हारे शब्दों की कम, आत्मिक बल की ज्यादा आवश्यकता है। तो दवा का काम करती है, दुआ का काम करती है मुरली। आठवां, मुरली स्वराज्य अधिकारी, बेपरवाह बादशाह और बेगमपुर का बादशाह बना देती है। कहां थे? फर्श पर, अर्श निवासी बना देती है। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम कहते थे, अब क्या करते हो? कहते हो मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। बाबा ने क्या कर दिया? जमीन आसमान का अंतर है, दिन रात का अंतर है। पहले इंद्रिय नौकरों की चाकरी करते थे, नौकरों की चाकरी, इंद्रिय नौकर है, उनकी चाकरी करते थे। जब नौकर वश में नहीं थे, अब राजा है, अब मालिक है, इंद्रिय वश में है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है अब उसे पता है, कौन सा वीडियो देखना है और कौन सा नहीं देखना है, कौन से गीत सुनने हैं और कौन से नहीं सुनने हैं। इंटरनेट पर कहां भटकना है और घूमना है अब उसे समझ में आ गया है। इसके लिए विकारों से आत्मा मुक्त हो चुकी है, सारे ट्रिगर्स विकारों के समाप्त हो गए हैं, क्योंकि जहां जाना ही नहीं, जिस मंजिल को जाना ही नहीं, उसके एड्रेस से क्या लेना देना। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ विद्यार्थी कभी यह सोचेगा सड़क कैसे बनाई जाए? हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है विकार, तो क्या लेना देना। जो सब्जेक्ट है, मुरली 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 2011 की मुरली है, 1 जनवरी, 18 जनवरी 2011, बाप चारों ही सब्जेक्ट की डायरेक्शन मुरली में देते हैं, इसलिए मुरली मुरली मुरली, और कहीं बुद्धि न जाए। सारा मुरली परमात्मा समाचार है। तो आठवां स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी के नशे में जब रहते हो पार्टियों से मुलाकात, तब इंद्रिय स्वतः ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलने लगती है, फिर भटकती नहीं, फिर आकर्षण नहीं होता, फिर उत्तेजनाएं नहीं होती, फिर उसको कोई प्रलोभन नहीं आता। नौवा तीन प्रकार के बच्चे, कौन कौन से? एक विधि पूर्वक सुनने वाले, समाने वाले, दूसरे नियम पूर्वक सुनने वाले, कभी समाने वाले कभी विस्तार करने वाले, वर्णन करने वाले, और तीसरे की तो वो कौन है उस पर जरा सोचना, जिसकी भगवान भी बात नहीं करना चाहता, गॉड इज साइलेंट, वो कौन महारथी होंगे? मास्टर मुरलीधर तो जो विधि पूर्वक मुरली सुनते उनकी चार निशानियां बाबा ने बताई है, कौन कौन सी? जो विधि पूर्वक सुनते हैं उनकी चार निशानियां हैं। विधि पूर्वक, महत्वपूर्वक, नया शब्द है, महत्वपूर्वक अर्थात महत्व जानकर सुनना। पहली निशानी स्वरूप बन जाते हैं, दूसरी निशानी रिस्पेक्ट, तीसरी निशानी कमाई और चौथी निशानी श्रेष्ठ गति। ये चार निशानी है जो विधि पूर्वक मुरली सुनते हैं। पहला, सुनते सुनते समा जाती है उसके अंदर, वो स्वरूप बन जाते, हर कर्म मुरली का स्वरूप बन जाता है, सिद्धि स्वरूप बन जाती है आत्मा। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी कमाई, रिस्पेक्ट, एक एक बोल बाप के लिए रिस्पेक्ट अर्थात बाप के एक एक बोल के लिए रिस्पेक्ट। तीसरी निशानी 2500 वर्ष की कमाई, एक एक वरदान खान, खजानों की खान है। चौथी निशानी श्रेष्ठ गति, मुरली को सुनते सुनते जैसे कर्मों की गति है हिसाब किताब की, वैसे मुरली सुनने की हिसाब किताब की गति को जानते हैं और श्रेष्ठ गति को पाते हैं। ये चिंतन का विषय है। ये क्या कह दिया उसने, ये तुमने क्या कह दिया, समझ में नहीं आया। हम भी सोच रहे हैं इसके विषय में, इसका अर्थ क्या है। मुरली सुनने की गति, हिसाब, मुरली सुनने के हिसाब किताब की गति को जानना, होमवर्क सबके लिए। मुरली सुनने के हिसाब किताब की गति को जानना अर्थात क्या? तो जो सुनने वाले हैं उनकी, विधि पूर्वक सुनने वाले हैं उनकी ये चार निशानी। एक दो बातें और है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। ये है 9वीं पॉइंट और 10वीं पॉइंट है, मुरली है श्वास। तो ये 10 पॉइंट ट्रैफिक कंट्रोल सुनते सुनते मन में रिवाइज करेंगे। सुनना, जानना, समाना, स्वरूप बनना, चार चीजें रोज करनी है। खाना मिला है, हजम करना है, स्पिरिचुअल इनडाइजेशन ना होने पाए। स्पिरिचुअल इनडाइजेशन। तो 10वीं पॉइंट थी श्वास। तो ऐसी 10 बातें मुरली सुनने से होती है, आज बाबा ने सुनाई। ये हम कहेंगे ऐतिहासिक मुरली है, मुरली पर मुरली। कई जगह इस मुरली के रेफरेंसेस आते हैं, कई जगह उस मुरली को कोट की जाती है 7-12-83 की, क्योंकि ये मुरली मुरली पर है। ऐसी बहुत कम मुरलियां हैं जो मुरलियों पर है। बड़ी बड़ी मुरलियों में बीच बीच में रेफरेंसेस आए हैं, मुरलियां ऐसी सुनो, ये करो, परंतु ये पूरी ही मुरली मुरली पर है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक मुरली है। डेट याद रखना 7-12-83। पार्टियों से मुलाकात किसी और मुरली से ली हुई है, और ये पार्टियों से मुलाकात एक बार हम रिवाइज कर चुके हैं, क्योंकि संडे की जून मास की एक मुरली में वो आ चुका है। एक रस्तिति, काका मामा चाचा सब कहां से आ गए, सब एक ही है तुम्हारा, एक ही रस, और कोई रस नहीं। रस खींचते हैं आत्मा को नीचे, जब उसमें रस आने लगे तो सब रस फीके पड़ जाएंगे। वो रस आए पर आत्मा टेस्ट करे, और लंबा समय टेस्ट करे अतिंद्रिय सुख को, तब तक इंद्रियों के सुख नहीं तो खींचते रहते। इंद्रिय के सुख विष समान प्रतीत हो, गिराने वाले, शक्ति को कम करने वाले, अवनति करने वाले। और जो सुख इंद्रियों से परे है वो सर्वोच्च है। तो एक रस्तिति, फिर बताया कन्याएं, कौन सा वायदा करना है? वर मिला, घर मिला, वर ऐसा जिसको दुनिया याद करती है, घर ऐसा जिसमें अप्राप्त कुछ नहीं, वरमाला, ये वायदा पक्का करना। और माताओं के लिए क्या कहा, गिर गई थी बचा लिया, और कन्याओं को गिरने से बचाया, वो गिर गई गिरकर गिरने से उनको बचाया, एक को गिरने से बचाया, एक जो गिर गई थी उसको वहां से बचाया। गौपाल की गौवे, दूसरी पार्टी है मायाजीत। जो मायाजीत है वही सेवा कर सकते हैं, विश्व सेवाधारी, जिसमें विकारों की अग्नि अभी भी धधक रही है, वो विश्व कल्याणकारी नहीं, वो सेवा कर ही नहीं सकते। वो जो कर रहे हैं भ्रम हो रहा है सेवा का। दूसरा, याद की मस्ती में मस्त ऊपर, खजानों की को समाने की चाबी है अचल अडोल रहना। वो जो कुर्सी वाले हैं, नाम मान शान, कितनी उनको खुशी होती है, तुमको कौन से खजाने मिले। तो खजानों के रखो, रखने के लिए क्या करो, अचल अडोल बनो। और लास्ट बात बताई स्वराज अधिकारी की, जिसकी हम चर्चा कर चुके। तो ऐसी मुरली में 10 बातें होती है। सबसे पहले क्या करती है मुरली, मस्त कर देती है, सुदबुद्ध खो जाती है। दूसरा, नाचने लगती है आत्मा। तीसरा, नशा चढ़ा देती है। चौथा, उड़ने लगती है। पांचवा, सैर करती है। छठवा, झूले में झुलाती है। सातवा, दवा का काम करती है। हर स्थूल बीमारी की भी दवा उसमें समाई है। यदि कोई बीमार इस भाव से सुने कि मैं ये जो सुन रहा हूं, सुनते ही मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ठीक होगी। एक संत था जिसके पास एक व्यक्ति आया जो थोड़ा डॉक्टर भी था। उसने कहा, ये बीमार है, मेरे घर में बच्चे बीमार है। उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था प्रिस्क्रिप्शन, तो उसने एक पत्ता ले लिया और उस पर दवाई लिख दी और कहा, यह दवाई खिला देना। अब उसको क्या समझ में आया, दवाई तो लिया नहीं, उसने पत्ते के टुकड़े किए और अपने बच्चों को खिला दिया, सब ठीक हो गए। और फिर अगली बार आया, कहा, वही दवाई तो जो आपने पिछली बार दी थी। उसने कहा, कौन सी, आपने किया क्या, वो तो पत्ते ही खिला दिए, उसी से ठीक हो गया वो। फेथ, लॉ ऑफ बिलीफ। बड़े बड़े डॉक्टर और अस्पतालों में पेशेंट ठीक नहीं होता, झाड़ फूक करने वालों से ठीक होके आता है। लॉ ऑफ फेथ काम करता है वहां पर। तो मुरली को सुनते समय ऐसे सुनो, परमात्मा मेडिसिन दवाई, प्रिस्क्रिप्शन डिवाइन मेडिकेशन है। सुनते ही दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द गायब हो जाएगा। इस भाव से सुनना, If ye order the mountain, come on, get up and get planted on the sea, and it shall obey you. बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारे हृदय में निश्चय है, विश्वास है, फेथ है, श्रद्धा है, उस पर्वत से कहो कि हे पर्वत, उठ और जा समुन्दर में गिर, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा, प्रोवाइडेड डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे गिरेगा, पहला ही संकल्प वो है तो नहीं गिरेगा, जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, तब वो काम करेगा। लॉ ऑफ फेथ। नौवा बताया, आठवा, स्वराज्य अधिकारी बना देता है, बेपरवाह बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह बना देता है। और नौवा, विधि पूर्वक सुनने से चार बातें हो जाती है, स्वरूप बन जाते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट हो जाता है, और कमाई होती है, और चौथा श्रेष्ठ गति होती है। उसमें एक होमवर्क दिया है, उस पर चिंतन करना है सबको ऐसे। और श्वास ऐसे, विधि संपन्न आत्माओं को ऐसे, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे, रूहानी मस्ती में मस्त योगी बन रही आत्माओं को ऐसे, मुरली और मुरली धर का रिगार्ड रखने वाली आत्माओं को ऐसे, मुरली के पीछे देह की सुदबुद्ध भूलने वाली आत्माओं को ऐसे, मास्टर मुरलीधर बच्चों को ऐसे, मुरली और मुरलीधर स्वरूप बच्चों को ऐसे, साकारी और आकारी सम्मुख बैठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। करते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते ओम शांति।